کیا چاہتے ہو مسرور؟ کون سا قیدی؟ کیا ہوا؟ کب؟ کیا اس بارے میں تم مطمئن ہو؟ ایک بہت ہی حساس اور اہم واقعہ ہے، اسے میرے خاص لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ مجھے سکون ملا ہے، چلا گیا جس نے میری رات کی نیند حرام کی ہوئی تھی اور میرا سکون برباد کیا ہوا تھا۔
تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی مزاحم؟
میں سو نہیں رہا سلمان۔
پھر کیوں نہیں ہلتے کہ جا کر کوئی کام وغیرہ تلاش کرو؟
یہ کس نے کہا تم سے کہ میں کوئی کام نہیں کرتا؟
زمین پر تمہارا یوں سیدھے لیٹے رہنا اور کسی چیز کو تکتے رہنا یہی تو بتا رہا ہے۔
میں خیمے کے سوراخ گر رہا ہوں۔
تو پھر بتاؤ کتنے ہیں؟
تمہارے آنے سے بھول گیا ہوں۔
جب گن چکو تو پھر بتا دینا کہ کتنے ہیں۔
یہ سوراخ، اے سلما، کیڑے مکوڑوں اور مچھروں کا ٹھکانہ ہے۔
پتا ہے مجھے یہ،
لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بہت ہی خطرناک ہیں۔
کتنی بد نصیب ہے وہ عورت جس کا شوہر تم جیسا ہے۔
صبح سے تم اس لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ افسوس ہے تم پر، کیا یہ مزاق کا وقت ہے؟ یہ کیا کام ہے آخر؟ تم تو بچوں کی طرح اس مٹی سے کھیل رہے ہو۔ اس کے مکین کہاں ہیں؟ یہ ورثہ کب ہمارے ہاتھ لگے گا؟ تمہیں پتا ہے کہ وہ کب مرے گا؟
جب اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی، سمجھ آیا؟
خدا حافظ، خدا حافظ ہے میرے پیشوا، اے موسیٰ ابن جعفر، آپ کی زیارت اب جنت میں ہوگی۔ اے خدا، ان کے قاتل پر لعنت بھیج۔
افسوس ہے تم پر اے بابا حب، تمہارا پیشوا اور امام اندھیری کوٹلی میں قید تھا اور تو نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔
میرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے کہ نہ سمجھ سکا اور وہاں نہیں جا سکا۔ افسوس ہے میری آنکھ، کان اور سمجھ پر کہ ان کی موجودگی کا علم نہ کر سکا۔
غم و اندوہ کافی ہے بابا حب، وہ تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ एक मजलूम तेरी मदद चाहता है ताकि उसकी फरियाद सुनो।
ऐ खुदा, मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा है। मुझे पुकारा तुमने?
हाँ, तुम्हें पुकारा है। मुझे बताओ जरा, इस गर्मी में कहाँ जा रहे हो?
सहरा की जानिब।
सहरा की तरफ? सहरा की जानिब, वो भी अचानक?
इससे पहले भी कई बार जा चुका हूँ। बताओ मुझे जुनेद, क्या सहरा की तरफ जाने के लिए किसी से पूछना जरूरी होता है?
दीवानों को कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती है बाबा।
ओ खुदा का शुक्र है, क्या मुझे तुमसे इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी?
ए अबा वाहब, मुझे बताना जरा, क्या तुमने अब तक पागलों का कोई शहर आबाद नहीं किया?
अगर ऐसा किया मैंने तो तुम वहाँ के पहले रिहायशी होगे। चल मेरे घोड़े चल।
क्या यही वो चीज है जिसने तुम्हें मसरूफ कर दिया है?
अफसोस है तुम्हारी बेवकूफी पर सलमा। क्या अपने कपड़े फाड़ूं या अपने सर को फोड़ लूं? यही छोटे छोटे सुराख है सलमा, ये जल्द ही बड़े हो जाएंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तो खतरा भी बढ़ जाएगा। जब खतरा बढ़ेगा ना, खैमे के सुतून का खात्मा हो जाएगा और खैमा फौरन ही नीचे गिर जाएगा। जिस वक्त खैमा नीचे गिरेगा तो फिर उस वक्त मेरे बीवी बच्चों की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। आप समझ में आया मैं क्यों इन सुराखों को रोजाना गिनता हूँ? चाहता हूँ तुमको इन खतरों से बचाए रखूँ।
मुझे तो एक ही चीज का पता है कि बर्तन कब खाने से भरेगा कि हम अपना पेट भर सकें।
उस वक्त जब ये कीड़े मकोड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।
खुद को धोखे में ना रख, मैं खूब जानती हूँ।
क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो सलमा?
मैं कह रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है।
मैं क्यों ऐसा करूँगा?
क्योंकि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है तुम उससे भाग रहे हो। तुम्हारा शौहर कहाँ है?
लकड़ी की छड़ी जमीन पर घुमा रहा है।
क्या करता है वो उस छड़ी से?
खेमे के अतराफ में दायरे लगा रहा है।
दायरा? भला क्यों?
वो आइंदा मिलने वाली भेड़ों के लिए जगह बना रहा है।
हा हा, फिर भी वो मेरे शौहर से तो बेहतर है जो खेमे के बड़े सतून के सुराख गिनता रहता है।
अजीब बदकिस्मती है इन दोनों भाइयों के हाथ।
कहाँ जा रही हो?
खेमे की तरफ।
जल्दी नहीं जा रही हो?
जो दूध उसके बाप ने भेजा है उसे गर्म करना है।
क्या उसके बाप ने दूध भेजा है?
इसमें हर्ज क्या है?
हर्ज? जाहिर है हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावात का अमल कायम है।
क्या कोई बाप अपने किसी बेटे को ज्यादा नहीं चाह सकता?
तो क्या मुजाहिम, वो अपने बाप का बेटा नहीं, दूध की हकदार मैं भी तो हूँ।
अगर ऐसा होता तो वो ये खैरात तुम्हें भेजता ना कि हमें।
अब वक्त आ पहुंचा है इस लकड़ी से निजात का या बाबा। अब खुदाया खुदाया, अब हिम्मत जवाब दे गई है।
इस डंडे की वजह से मैं लोगों के दरमियान जलील हो गया। खुदाया, वो तेरा वली था जो हमसे बिछड़ गया है, मुझे भी उनके साथ महशूर कर दे या मुझे सब्र और खिदमत का मौका अता कर। ऐ दुआओं को कबूल करने वाले, कौन? दुरैद इब्ने अबी? वालेकुम अस्सलाम।
दस, बीस, तीस, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः।
ये लो, तुम इससे इस तरह का एक और बना सकते हो। तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम क्या काम करते हो। चरवाहा? लेकिन मैं तो यहाँ कोई भेड़ बकरियां नहीं देख रहा। यानी तुझे बाप की विरासत का इंतजार है। तू खुद सही सालिम है, फिर भी बाप की विरासत का इंतजार कर रहा है। यानी तू इसलिए जिंदगी गुजार रहा है कि तुझे बाप की विरासत मिले। बाप को इस दुनिया में बेटे का सहारा मिलना चाहिए, लेकिन तू उसके मरने का इंतजार कर रहा है। क्या यही है तेरी जिंदगी दुरैद?
क्या हुआ उनको? ऐ खुदा तेरा शुक्र है। नहीं सुना क्या कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए? हर जानदार को इस मरहले से गुजरना है। तुम्हारा बाप मौत से नहीं बच सकता। मेरे लिए तो यही काफी है कि बस चंद भेड़े हों हमारे पास। अब हमें रोजाना उनसे दूध का गिलास नहीं चाहिए। ये लालच तुम्हारे निकम्मा होने की वजह से है ऐ शख्स।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम अस्सलाम। कहाँ थे बाबा? कितने दिन हो गए हमसे मिलने नहीं आए।
घर में था।
घर में क्या कर रहे थे? मेरी बात का जवाब नहीं दिया बाबा। आप घर में क्या कर रहे थे?
बीमार था, सेहतियाबी का इंतजार कर रहा था।
कौन सी दवा इस्तेमाल की?
वही दवा जो खलीफा इस्तेमाल करता है।
फिर जाओ और हमारे बोर्चे खाने में जाके जो दिल चाहे खाओ।
खाना पीना कमजोरों की दवा है।
तो फिर ताकतवरों की दवा क्या है?
हिकमत है।
तेरी हिकमत क्या है?
जिस घोड़े पर मैं सवार होता हूँ उसे देखकर कोई मुझ पर जुल्म नहीं करता। रुकना जरा काजी जुनैद, बताओगी मुझे इस पिंजरे में क्या है?
दो मुर्ग हैं।
जब मैंने सुबह देखा था तो तुम्हारे पास किताबें थी।
नहीं देख रहे हो खुदा की कुदरत के किताबें कैसे मुर्गियों में बदल गई हैं।
बेहतर होगा कि ये कहो कि खुदा की भी क्या कुदरत है कि एक अहमक काजी बन गया।
खुदा तू हम पर अपनी इनायत कर, हमें अजाब से महफूज रख।
कहाँ जा रहे हो दुरैद?
अपने भाई के घर।
रात के इस पहर उससे क्या काम पड़ गया तुम्हें?
मेरा ख्याल है कि बाबा की तबीयत के बारे में उसे बता दूं।
तो फिर अब तक क्यों तुमने उसे इत्तला नहीं दी?
मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा का इस बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया है।
अच्छा, और क्या देखा? जायदाद देखी उनकी?
अफसोस है तुम पर रफिया, क्या सिर्फ तुम्हें जायदाद की फिक्र है, उनकी मौत का गम नहीं है?
तुम भी अजीब इंसान हो दुरे, कब से तुम्हें अपने बाप से इतनी मोहब्बत हो गई है, जबकि तुम एक अरसे से उसकी मौत की तमन्ना कर रहे थे।
उस वक्त से जब से मुझे ये एहसास हुआ कि सारी जिंदगी मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया कि उनके कांधों से बोझ हल्का कर सकूं।
बताओ मुझे जरा दुरैद, कहीं तुम्हारे अंदर कोई जिन तो नहीं आ गया?
जिन आ गया? तुम क्यों मुझे ऐसा समझती हो?
तुम दुरैद हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। जब से तुम ये दाने लाए हो देख रही हूँ कि तुम बदल रहे हो।
इन दानों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ये शख्स तोहफा है जिससे मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे नसीहत की। देर कर दी मैंने, जल्दी जाता हूँ अपने भाई से मिलने ताकि अपने बाबा के पास जा सके हम। ए मज़ाहिम, मज़ाहिम,
कौन हो तुम?
मैं हूँ तुम्हारा भाई।
इतनी रात गए, क्या काम है तुम्हें?
हमारे बाबा।
क्या हुआ?
हमारे बाबा सख्त बीमार हैं।
ए खुदा उन पर रहम कर, ए खुदा हम पर अपना रहम कर, ए खुदा हमारी तमाम गलतियों को दरगुजर फरमा।
खुदाया उसे जल्दी मौत दे दे।
तू सो जाए औरत, खुदा तेरी सांसें रोक ले।
और पियो। मुझे बताओ बाबा, इस शरबत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
शुरू में मीठा है और आखिर में कड़वा।
ये कैसे मुमकिन है कि शरबत के दो मजे हों, मीठा और कड़वा?
ठीक ऐसे जैसे बच्चे की विलादत पर माँ के आंसू और बच्चे की मौत पर भी माँ के आंसू।
क्या तुमने हमारा नया महल देखा है?
हाँ देखा है।
अरे ख्याल में कैसा है?
मेरी राय? क्या पूछ रहे हो? सुतून ऊंचे कर दिए और दीन को नीचा कर दिया, पत्थर ऊपर ले गए हो और कुरान को नीचे ले आए हो। अगर ये तुम्हारे माल से बना है तो जाया किया है, खुदा फजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और अगर ये दूसरों का माल है तो जुल्म किया है, खुदा जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। क्या चाहते हो और भी कुछ कहूँ?
नहीं अब भाव, नहीं, इतना ही काफी है। कसम खाता हूँ अगर और भी कहोगे तो तुम मुझे जहन्नम के अंगारे बना दोगे।
बस करो भाई, मौत पर हक है, मौत पर हक है। चले बाप को सुपुर्द खाक कर दे। चलो भाई उठो, उठो चले।
मैं पूछती हूँ कि भेड़ों में हमारे हिस्से का क्या हुआ?
अभी तो मेरे बाप का कफन भी मेला नहीं हुआ।
उसका जायदाद से क्या ताल्लुक?
हमें कुछ इंतजार करना होगा।
क्यों इंतजार करना होगा? जायदाद अपने हिस्सेदारों के इंतजार में है। कहीं ऐसा तो नहीं दुरैद तमाम भेड़ों को हत्या कर अपने साथ ले गया है?
हाय मेरा भाई दुरैद, वो बाबा की मौत पर मुझसे ज्यादा गमजदा था।
वो इसलिए गमजदा था कि उसे ज्यादा दूध मिलता था।
खुदा का खौफ कर ए औरत,
यही हकीकत है।
ये कौन सी हकीकत है?
मुझे बताया नहीं तुमने भेड़ों में से हमारा हिस्सा कहाँ गया?
खुदा की पनाह तुझसे, तू परेशान मत हो, भेड़े जल्द आ जाएंगी।
किस वजह से तुम इतने परेशान हो दुरैर?
बाबा की जायदाद की वजह से।
कितनी जायदाद है ये? 5 भेड़ें, 1 खेमा, 1 ओढ़ने वाली चादर और 1 पुरानी सी चटाई।
हमारी मुश्किल खेमा और सामान नहीं रफिया, हमारी मुश्किल वो 5 भेड़ें हैं।
क्या कोई वसीयत है तुम्हारे बाप की?
हाँ, हमारी मुश्किल वही वसीयत है।
क्या तुम्हारे बाप ने वो भेड़ें तुम्हारे भाई के नाम कर दी हैं?
उनकी 5 भेड़ें थी, आधा हिस्सा उसमें भाई का है और 1/3 मेरा।
क्या उन 5 भेड़ों में से तुम्हारा 1/3 और भाई का आधा है?
और क्या, अगर इसका कोई हल तुम्हारे पास है तो बताओ मुझे।
क्या ही अच्छा ना था कि इन दोनों भेड़ों को अपने घोड़े पर सवार कर लेते हो पागल, बजाय इसके कि इन्हें खींचते हुए ले जा रहे हो।
अपनी तजवीज अपने पास रख, ज्यादा अच्छा होता कि तुम अपना अमामा अपने सर पे रखने के बजाय अपने मुंह में रखते।
कसम खाता हूँ बाबा, एक दिन तुम्हें जरूर जेल भेज कर रहूँगा।
फिर जेल में मेरे घोड़े के लिए भी एक जगह का इंतजाम करके रख।
अपने इस डंडे को घोड़ा बनाकर और इन पागलों वाली चालों से अब तुम अपना काम नहीं चला सकोगे।
क्यों ये लोग तानाजनी की बातें कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि इनको मुझ पर कोई शक हो रहा है?
अबा वहाब,
हाँ?
क्यों चुप लग गई है तुम्हें? लगता है सर पर मौत मंडला रही है, इसलिए कि मेरे मुंह से सज्जो निकल गया है।
अगर तूने मुझे फौरी रास्ता न दिया तो अपने घोड़े तले कुचल दूंगा तुम्हें।
आज के बाद तुम्हारा घोड़ा कुछ नहीं कर सकेगा। तुमने मेरी शिकायत खलीफा से की, मैंने तुम्हारी शिकायत खलीफा से कर दी। इस दफा तुम पहले की तरह कामयाब नहीं हो सकोगे बाबा।
एक दफा पहले भी मैंने आपको इस बाजार में देखा था। मुझे याद है उस वक्त आप बगल में 2 किताबें दबाकर जा रहे थे।
पहचान लिया, कसम खाकर कहता हूँ तुम्हें पहचान लिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम्हारी आरजू थी कि 2 किताबों की जगह 2 भेड़े होती हाथ में।
लेकिन एक मुश्किल काम है ये जनाब।
ठीक जगह पर आए हो तुम, मैं काजी जुनैद, तुम्हारी मुश्किल क्या है?
मेरे बाबा फौत हो गए हैं, उन्होंने 1 खेमा और 5 भेड़े विरसे में छोड़ी हैं। खेमा और दूसरा सामान तो हमने आपस में बांट लिया, लेकिन भेड़ों की तकसीम में हमारा इख्तलाफ हो गया।
विरसा छोड़ने वाला बहुत अच्छा और वारिस उससे भी अच्छा।
फैसला करने में ज्यादा जल्दी ना करें काजी मोहतरम, मेरे बाबा ने वसीयत की थी कि भेड़ों को इस शर्त पर तकसीम करें कि आधा हिस्सा मेरा और 1/3 मेरे भाई का।
क्या तुम दोनों भाइयों का इख्तलाफ इसी मसले पर है? इसका हल बहुत आसान है।
हम कैसे तकसीम करेंगे?
आधा हिस्सा तेरे भाई का है, बनेगा 2 भेड़े और 1 का आधा, तीसरा हिस्सा भी 1/3, वो बनेगा 1 भेड़ और 1 का 3/4। देखो कितनी आसानी से तुम्हारा मसला हल हो गया।
मोहतरम काजी साहब, 3/4 भेड़ का कौन सा हिस्सा है, सर और सीना या फिर उसका पेट और दुम?
मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। ये मसला तो जरा पेचीदा है, चलो बैठकर हल करते हैं साहब। किताबों के 2 फायदे हैं, इसका मुताला भी करो और जब बैठो तो अपने नीचे भी रख लो।
हल ढूंढ लिया मैंने, क्या राय है तुम्हारी बवाब? मैं चाहता हूँ कि तुम इस महल में मेरे पास रहो।
नहीं नहीं, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता।
क्यों?
टोकरियां बनाकर अपनी रोजी कमाता हूँ।
मुसलमानों के बैतुल माल से रोजी कमाओगी और आखिर उम्र तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें।
मैं इसे कबूल करता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि इनके ऐब निकाल दिए जाए।
बता सकते हो क्या ऐब है इसमें?
पहला ये कि तुम्हें नहीं मालूम कि हम क्या चाहते हैं कि तुम उसे पूरा कर सको। दूसरा ये कि तुम्हें नहीं मालूम किस वक्त मुझे जरूरत पड़े कि उस मौके पर तुम उसे पूरा कर सको। तीसरा ये कि तुम्हें नहीं मालूम मेरी जरूरत की मकदार कितनी है, और तुम मेरी जरूरत से ज्यादा ना दे दो कि मैं फजूल खर्च बन जाऊं, या कम दे दो कि मैं मुश्किल में पड़ जाऊं।
तुम्हें हर हाल में रोजी मुहैया की जाएगी जमानत के साथ।
खुदा ने मेरी रोजी की जमानत तुमसे बेहतर की है। खुदा मुझे देता है तेरी तरह बगैर किसी एहसान के। अगर खुदा गजब में आ जाए तो भी मेरी रोजी बंद नहीं करेगा, बिल्कुल तेरे बरक।
सच कहा तुमने अबा, खुदा की कसम सच कहा।
मैं तो थक गया हूँ, कोई रास्ता ना तो नहीं आता सिवाय उस पहले वाले रास्ते के जिसका मैंने कहा था।
लेकिन मैं अब तक नहीं समझा काजी साहब।
ओहो, और आसान करके बताता हूँ, उन 5 भेड़ों में से 1 मुझे दे दो, रह जाएंगी 4, आधा तुम्हारा यानी 2 भेड़े और 1/3 इसका यानी 1 भेड़, आधा हिस्सा तेरे भाई का है।
फिर भी जो 1 बचेगी उसका क्या होगा?
वो 1 भी तकसीम करने के सिले में मुझे बख्श देना।
इससे तो बेहतर है अपने बाप की जायदाद का बंटवारा ही ना करें।
दफा हो जाओ, जायदाद छोड़ने वाला और पाने वाला दोनों जाए जहन्नम में।
तुरित, वो जो वहाँ एक आदमी है, देखना उसे।
लगता है पहले भी उसे देखा है।
जानते हो इसे?
एक दिन सहरा में देखा था।
वो उस डंडे के साथ क्या कर रहा है? लगता है इस पर सवार है।
पता नहीं, जिस दिन पहले इसे देखा था ऐसा डंडा ही इसके हाथ में था।
असली घोड़े के मानिंद इस पर सवारी कर रहा है।
खुदा की कसम ये तो वही है। क्यों ऐसा जाहिर कर रहा है कि डंडे पर घोड़े की तरह सवार है?
सलाम हो तुम लोगों पर।
सलाम हो तुम पर भी।
क्या तुम ये भेड़े बेचना चाहते हो?
लगता है मुझे पहचाना नहीं तुमने।
नहीं,
खुदा की कुदरत देखो, उस शख्स से कितना मिलता जुलता है ये।
क्या इन्हें बेचना चाहते हो?
हम चाहते हैं इन्हें तकसीम करें।
हमें बताओ कोई काजी, हकीम, अकलमंद जानते हो जो कि इन्हें हम 2 भाइयों के दरमियान तकसीम कर सके?
तुम ये चाहते हो कि मैं इन्हें तुम दोनों के दरमियान तकसीम कर दूं?
तुम
क्यों नहीं भाई चाहते हो कि कैसे आपस में तकसीम करो?
लगता है पागल है ये शख्स।
इसका इम्तिहान ले लेते हैं, शायद ये पागल ही कुछ कर दे जो काजी से ना हुआ हो।
छोड़ो इम्तिहान को, हमें जल्दी घर पहुँचना चाहिए। मैं अब बहुत थक गया हूँ, हर राह चलते से मशवरा लेने लग जाते हो।
आपस में क्या कानाफूसी कर रहे हो? अगर मुझे काजी नहीं समझते तो चले जाओ यहाँ से।
नहीं, तुम ही फैसला करो हम दोनों के दरमियान।
ये चाहते हो ना कि इन्हें कैसे तकसीम करो?
हमारे बाबा मर गए हैं और ये 5 भेड़े विरसे में छोड़ गए हैं। उनकी वसीयत थी कि आधा भाई का और 1/3 हिस्सा मेरा होगा।
बहुत ही नेक काम है।
क्यों हंस रहे हो ऐ शख्स?
तुम्हारी हिमाकतों पर।
छोड़ो इम्तिहान को, कसम खाता हूँ मैं काजी जुनैद और इसमें 1 अमामे और कुछ किताबों का फर्क है। हमें अपने खेमों तक जल्द जाना चाहिए, देर हो जाएगी।
रुको रुको, जरा इसकी बात सुनते हैं।
इसमें से आधा तेरा और 1/3 तेरा। ये भेड़ पकड़ो और अपनी भेड़ों में रखो।
क्यों इसे एक भेड़ को हमारी भेड़ों में बढ़ा दिया?
थोड़ा सबर करो, समझ जाओगी। ये आधी भेड़ तुम्हारी है, क्या ऐसा नहीं है?
हाँ बिल्कुल।
ये 6 भेड़ हैं, 3 इनमें से निकालो। 1/3 भी तुम्हारा, 6 का 1/3 बनेगा 2, दो भेड़े अपनी ले, दो भेड़े उठा लो। नहीं, ये तो मेरी है, अपनी दो भेड़े उठा लो। मैं भी ये उठाता हूँ, ये मेरी भेड़ है।
ये सब कहाँ से सीखा तुमने?
इस तरह की मिसाल एक आदिल हाकिम ने अंजाम दी थी, मैंने भी सीखी।
बताया नहीं तुम्हारा नाम क्या है?
क्या वो दाने और डंडा अभी भी तुम्हारे पास है?
डंडा और दाने? ये वही शख्स है जिसको एक दिन सहरा में देखा था मैंने, मुझे हिदायत की थी इसने। लेकिन ये क्यों इस तरह डंडे पर सवार होकर गलियों में पागलों की तरह घूमता है, जैसे इसका दुनिया से कोई ताल्लुक ना।